चलिए नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رهبر كامل کے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کی حیثیت سے، اس میں سے ہم نیا ٹاپک دیکھیں گے. چلیں پیج 98 والا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. تبلیغ کا مقام، پیج نمبر 98 98، اور ٹاپک ہے تبلیغ کا مقام. میں ریڈ کرتی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس کو، اور جو چیز سمجھنا ہے اس کو مارک کر کے ہائی لائٹ کریں گے. یہاں ایک نقطہ اور مقام قابل غور ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک روایت سے 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، لیکن ایک اور جو روایت ہے اس میں 1,000 نمازوں کا ہے. انہوں نے اتنے بڑے ثواب کو ترک کر کے تبلیغ کا ثواب حاصل کیا. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول، یعنی جو کم افضل ہو، کو اختیار نہیں کرتے تھے. اگر تبلیغ دین حقہو بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازوں سے افضل نہ ہوتی تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ سے باہر نہ نکلتے. معلوم ہوا کہ تبلیغ اسلام بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں، نہ تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور نہ علماء اور مبلغین کا ساتھ دیتے ہیں، بس وہ اپنی تلاوت اور اپنی عبادت اور تسبیح خوانی میں منہمک رہتے ہیں. وہ غور کریں کہ وہ اپنا کس قدر نقصان کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبلیغ نہ فرماتے، تبلیغ کی فضیلت بیان نہ کرتے، صحابہ کرام کو تبلیغ کی تربیت نہ دیتے تو آج دین اسلام انقا ہوتا، یعنی نہ پید ہوتا، نظر نہ آتا، بالکل یعنی کم دکھتا ہمیں، اس کے آثار تک نظر نہ آتے. آج یہ مساجد جو آباد ہیں، دین کے چرچے ہیں، اسلام کے تذکرے ہیں، سیرت طیبہ کا بیان ہے، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تبلیغ کی ترغیب ہی کا نتیجہ ہے، یعنی جو آپ نے اس کام کی دوسروں کو بھی رغبت دلائی. اگر آپ اس قدر رغبت نہ دلاتے تو آج تبلیغ و دعوت کا یہ سلسلہ نہ ہوتا اور اسلام بڑھتا پھولتا اور پھیلتا دکھائی نہ دیتا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا بیسک انسینٹیوز تھے، محرکات تھے کہ جس کے ساتھ تبلیغ مؤثر ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر بھی بہت سارے عمل کے پوائنٹس، پہلو جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. تبلیغ ہر کسی کے بس کا روغ نہیں، یہ عظیم کام وہی سر انجام دے سکتا ہے جو اپنے قلب و نظر میں تبلیغ کی اہمیت اور جذبہ صادق رکھتا ہو. ہمارے خیال میں تبلیغ کے لیے وہی شخص بے چین اور بے قرار ہوگا جو اپنے اندر یہ چار چیزیں رکھتا ہو. پہلے اتنی بات کو تھوڑا سا آپ کے لیے الیبوریٹ کر دوں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ تبلیغ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، تو اس سے حقیقت میں وہ پروفیشنلی کہہ لیں، یا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے منظم انداز سے تبلیغ کرنا مراد ہے، اور اسی طرح انڈیویجول بیسس پہ دوسروں کو برائیوں کو کرتے ہوئے دیکھ کے روکنا یا کسی اچھے کام کا حکم دینا، حقیقت میں یہ بہت مشکل کام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو سب سے بری بات ہی یہ لگتی ہے کہ کوئی ان کو ٹوکے. تبلیغ کیا ہے؟ جیسے کسی کے زخم کے اندر ہاتھ ڈالنا، लोग डॉक्टर के पास जाते भी हैं कि हमारा इलाज कर दें, लेकिन जो ही वो जख्म को हाथ लगाता है तो चीखने लगते हैं, और कुछ तो डॉक्टर्स के पास जाना भी नहीं चाहते और जख्मों का इलाज करवाना चाहते हैं। मुबल्लिग जो होता है, लोगों को बुराई से रोकने वाला असल में एक डॉक्टर होता है, एक रूहानी डॉक्टर होता है, और जिस्मानी बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन रूहानी बीमारियों का इलाज एक मुबल्लिग करता है। तो ये काम चूंकि मुश्किल भी है, बज़ाहर इसमें कोई इतनी पंप एंड शो भी नहीं दिखती, लोग को इस काम को बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं समझते, फिर ऊपर से लोग जो हैं वो बुरा भी मानते हैं, तो फिर ज़रूरत है इस बात की कि जो शख्स ये काम करना चाहता है, जिसका जिक्र हमने पीछे देखा कि इतनी अजर की चीज़ है कि जिसके लिए सहाबे कराम ने मस्जिद नबी की नमाज़ों तक को कुर्बान कर दिया, बैतुल्ला की नमाज़ों को छोड़ा और फैल गए दुनिया में अल्लाह के नबी के सल्लम के मिशन को पूरा करने के लिए, तो चार चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखनी हैं और साथ साथ अपना जायज़ा लेना है। क्या मेरे अंदर ये चीज़ें हैं? और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इसमें से मिल जाएगा, जिसमें हम ये अमूमन कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम लोगों को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, या बताते हैं तो फ़ायदा नहीं होता और हम फिर मायूस हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं अच्छा आज इसके बाद मैं नहीं कभी कुछ बताऊंगी। तो कौन कौन से इंसेंटिव हैं, कौन कौन से मोटिव्स हैं जो इंसान को इस काम पे जमा देते हैं, क्योंकि इस रास्ते में जो मुखालफतें आती हैं, जो आंधियाँ चलती हैं, वो कमज़ोर दरख्तों की तरह इंसानों को गिरा देती हैं, और इंसान ऐसे महसूस करता है कि जैसे मैं इस काम को कर नहीं पाऊँगा। बाज़ दफ़ा ये मुखालफत सिर्फ बेदीनों की तरफ से नहीं होती या गलत काम करने वालों की तरफ से नहीं होती, बल्कि दीन को समझने बूझने वाले लोग भी ऐसे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके लिए, जमने के लिए जो पहली शर्त है वो क्या है? फरीज़ा तबलीग का शदीद एहसास, ये शिद्दत से जज्बा दिल में आ जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर ये मैं नहीं करूँगी तो फिर मैं अपना भी नुकसान करूँगी और दूसरे लोगों का भी नुकसान होगा इससे। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, अगर हम इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम महसूस करेंगे कि जितना ये एहसास अपने अंदर बढ़ता जाता है, फिर हकीकत तो ये है कि इंसान दिन तो दिन रात की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि काम बहुत है और वक्त थोड़ा है, ज़िंदगी मुख्तसर है, आज या कल कब बुलावा आ जाए किसी को नहीं पता, और अगर हमने अपने इर्द गिर्द की गंदगी न दूर की तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि हम खुद भी साफ नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ जो इसमें मोटिव बनती है वो क्या है? रज़ाए इलाही का बेपनाह शौक। मैं चाहूँगी कि इस हिस्से को आप हाईलाइट करें, क्योंकि ये नुक्ता बाकी तमाम नुक्तों से बड़ा है। जब हम अल्लाह के दीन का काम या तबलीग का काम या लोगों की इस्लाह का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ना, तो फिर हम मुतमईन भी रहते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, और मुश्किलात में भी करते रहते हैं। हालात बिगड़ें या बदलें, सही या अच्छे या बुरे, हम उस काम पे जमे रहते हैं। लेकिन जूं ही इंसान अल्लाह की बजाय किसी और की खुशी के लिए करे, किसी और को दिखाने के लिए करे, या किसी और के साथ अपने आप को जमाने के लिए करे, उसको अपनी मोहब्बतों का एहसास दिलाने की नीयत से करे, तो बाज़ दफ़ा फिर इंसान बहुत बड़े बड़े नेकियों के मौके खो देता है। ऐसे वक्तों में इंसान को अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए जब इंसान इस रास्ते में आता है तो मुश्किलात तो आती हैं, फिर मुश्किलात आती हैं तो बाज़ दफ़ा आप जिन लोगों की खुशी के लिए कर रहे होते हैं वो भी आपसे खुश नहीं होते, फिर आप कहते हैं ये मैं किस मुश्किल में फंस गई, इधर भी नहीं फ़ायदा इधर भी नहीं फ़ायदा। वो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन, यानी ना आ के बात बने ना जा के बने, तो बेहतर है कि इस काम को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह की रज़ा, क्योंकि जिसने अल्लाह के लिए किया ना, फिर उसी की बात में असर भी होगा, उसी की बात को सुन के लोग अमल की तरफ भी आएंगे, क्योंकि जब अल्लाह के लिए पुकारेंगे तो अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, और जब इंसानों के लिए करेंगे तो इंसानों की तरफ बुलाएंगे, ग्रोहों की तरफ बुलाएंगे, जमातों की तरफ बुलाएंगे, इदारों की तरफ बुलाएंगे। तो ये बड़ी ही अहम चीज़ है जिसको हम सब ने अपने दिल में पैदा करना है, और वो क्या है कि इस काम को खालिस और सरासर अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। तीसरी चीज़, इंसानियत का सच्चा दर्द, एक पेन फील करना है अपने अंदर कि क्या ये लोग इसी तरह से दुनिया से चले जाएंगे। मैं महसूस करती हूँ कि जैसे आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मसलन आप खाना पकाते हैं। अब खाना पका रहे थे तो उस खाने के दौरान क्या हुआ कि हल्की आंच पे भी पक सकता था, लेकिन नतीजा क्या होता कि देर से पकता, या हो सकता है कि जो लोग भूखे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मेहमान है तो चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं तो आप फिर तेज़ आंच में चूल्हा खाना पकाते हैं, आपकी कोशिशें बढ़ने लगती हैं। क्यों? कि आपको पता है कि अगर मैंने वक्त तेज़ ना की आंच और जल्दी ना पकाया या अपनी कोशिशों को बढ़ाया ना, तो फिर इस खाने का फ़ायदा नहीं होगा, या कुछ लोग महरूम हो जाएंगे, या लोग भूखे चले जाएंगे। इसी तरह हर इंसान अपनी तौफीक से नेकी की कोशिशें कर रहा होता है, तबलीग की कोशिशें करता है, लेकिन वो इस दर्जे की नहीं होती कि जिससे सब तक फ़ायदा पहुंच सके। फिर जब इंसान ये महसूस करता है ना कि इतने भूखे हैं मेरे इर्द गिर्द, इतने भी ऐसे लोग हैं, तो फिर वो भागता है, फिर दौड़ता है। और इसके लिए आप देखिए कि अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने बंदों की मोहब्बत है। मैंने देखा है कि आज के दौर में माइंड योर बिजनेस और डोंट टॉक अबाउट रिलीजन और जस्ट अपने आप में रहो और डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड हर एक ने अपने बाहर लगाया है, तो उसकी वजह से इंसानियत का दर्द भी दिल में नहीं रहा। हम लोगों को अपने सामने गलत काम करते देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल नहीं तड़पते उनको देख के। हम कहते हैं सो के जो कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है कि वो बच जाएं, लेकिन फिर अब हम क्या करें? नहीं, अपने दिल में इस चीज़ की तड़प पैदा करनी है कि मैंने इस पैगाम को, रब के पैगाम को, उसकी एक एक मखलूक तक पहुंचाना है, इंसानों तक। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं तो इंसान तो कम सुनते होंगे, हो सकता है कुछ जिन्नात भी सुनते हो सकता है फरिश्ते भी हमारी बात सुनते हों। अगर इंसान को इस चीज़ का यकीन लग जाए ना कि मेरी वजह से अगर ये पैगाम फैला तो ये मेरे ही हक में होगा, तो मेरा तो ख्याल है कि हम लोगों के पाँव पड़ने वाली कैफियत में आ जाएं। पड़ने तो नहीं चाहिए किसी के पाँव, लेकिन मिसाल देने के लिए ये बात की आपके सामने कि किसी तरीके से हम उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। हमारे अंदर ये दर्द नहीं होता, और मैं इसको इस तरह से महसूस करती हूँ कि हम किसी को भूखा देखते हैं तो हमारा दिल तड़पने लगता है, किसी को सर्दी में ठिठरता देखे तो हमें तरस आता है। आप सोचें, जरा बाहर निकलें तो एक शख्स को बहुत ठिठरता हुआ कागज़ के ऊपर, ज़मीन पे कागज़ बिछा के बैठा हुआ देखें, दिल में दर्द आएगा ना। आप किसी को बाहर निकलें और देखें कि किसी के चेहरे पे जर्दी छाई हुई है, भूख के साथ उसकी हालत बुरी है, तरस आएगा ना, दिल चाहेगा ना फौरन कमरे से कुछ ना कुछ निकालूं और इसको दे दूं। तो क्या इतना ही, कम अज़ कम इतना ही दर्द हमें लोगों को शिर्क में मुब्तला देख के आता है? क्या हम उन अपने ही जैसे लोगों को गुनाहों में मुब्तला देख के तड़पते हैं कि अल्लाह ताला ये कहाँ जाएंगे, ये चले गए दुनिया से तो इनका मामला क्या होगा? तो लिहाजा इंसानियत का सच्चा दर्द, और ये खुद बहुत मिल जाता है जब रब से मोहब्बत होती है। मैंने देखा है कि माँ से प्यार होता है ना तो उसके बच्चे से भी प्यार होता है। हर वक्त हम अपने ही बच्चों को क्यों प्यार करते हैं, भाइयों के बच्चों को क्यों प्यार करते हैं, बहनों के क्यों करते हैं? वो बच्चा हमें क्यों प्यारा लगा? क्योंकि उसका बाप जो था वो हमें प्यारा लगता था। वो बच्चा क्यों प्यारा लगा? क्योंकि उसकी माँ हमें प्यारी लगती थी। दुनिया में बड़े बच्चे हैं, खूबसूरत से खूबसूरत हैं, लेकिन आपके दिल में वो हूक नहीं उठती उनके लिए। क्यों? कि उनकी निस्बत आपसे इतनी जुड़ती। इसी तरह अगर रब से मोहब्बत होगी ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि रब के बंदों से मोहब्बत ना हो। अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसा फ्यूल का काम देती है कि जो इंसान को फिर हर काम करने के लिए तैयार कर देती है। फिर मैं इसको एक तरह से और भी महसूस करती हूँ कि आप देखिए कि किसी औरत, यानी कोई भी माँ है और उसकी गोद में अगर बच्चा है, या कहीं आप जाते हैं, आप उस औरत के बच्चे से प्यार करना शुरू कर दें, वो माँ खुद बखुद आपको मोहब्बत से देखना शुरू हो जाएगी। आप किसी इंसान से प्यार करें लेकिन उसके बच्चों को डांटते रहें या घूरते रहें, तो वो इतना खुश नहीं होता जितना ज़्यादा कोई खुश होता है जब आप किसी के बच्चे से प्यार करते हैं। तो जिस तरह माँ के बच्चे से प्यार करें तो माँ को प्यार आता है ना आप पे, इसी तरह जब हम रब की मखलूक, रब के बंदों से प्यार करते हैं, तो रब को हमसे प्यार होगा। फिर अल्लाह ताला का जो हमारी तरफ मेलान होगा और जो तवज्जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा होगी जो आम हालात में नहीं होती। चौथी चीज़ क्या है? उखरवी कामयाबी की गैर मामूली फिक्र। उखरवी का मतलब है आखरत की, यानी इंसान को इस चीज़ का शौक लग जाए कि मैंने आखिरत में कामयाब होना है। दुनिया की कामयाबियों के लिए तो बहुत सारे काम करते ही हैं और होते ही रहेंगे, लेकिन जब तक हमें आखिरत की कामयाबी का यकीन ना हो, उसके अंदर हमें फिक्र ना लग जाए, तब तक ये काम नहीं होते। तो हम अपने आप को इन चारों पैमानों पे परख सकते हैं। क्या मेरे अंदर इस फरीज़े तबलीग की शिद्दत से सांस है? क्या ख्याल है, आप महसूस करते हैं? आप लोगों में से कोई कहेगा कुछ? कितना को फील करते हैं? यानी आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तो हमें मुकल्लफ बना दिया ना अपने इर्द गिर्द वालों का, कुल्लुकुम रायन, तुम में से हर एक चरवाहा है, शेफर्ड है अपने इर्द गिर्द का। हम बस जब अपने ही घर तक बात करके कहते हैं बस ठीक है, हो गया और होना चाहिए, जब तक हमारे नेबर्स, हमारे करीब, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज व अकारिब, दोस्त, ये सब इस चीज़ पे नहीं आते, तो फिर समझें कि बात नहीं बनती। तो लिहाजा इसके लिए तड़प की ज़रूरत है और अच्छी कोशिशों की ज़रूरत है। अब एक एक करके देखते हैं कि मुबल्लिग के अंदर कौन कौन से वसफ होने चाहिए, यानी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे प्रीचर में, एक अच्छे दाई दीन में। तो लिखते हैं कि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस को देखते हैं, तो हमें आप में ये चारों बातें भी तमामी ही व भी कमाली ही, चाहें तो इन लफ्ज़ों पे आराब लगा लें क्योंकि ये अरबी के लफ्ज़ हैं, भी तमामी ही यानी तमाम मुकम्मल तौर पे, व भी कमाली ही और कमाल के दर्जे पे दिखती हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लम के अंदर ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़े तबलीग के एहसास का ये हाल था कि आगाज़ नबूवत से लेकर हयात तय्यबा के आखिरी रोज़ तक अपने तबलीगी मिशन में साई में मसरूफ रहे, साई यानी कोशिश में। और आपका मामला कैसा था? अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए रसूल, जो कुछ हम आपकी तरफ नाजिल करते हैं इसे दूसरों तक पहुंचा दीजिए। फ़ाइलम तफ़अल फ़मा बल्लगत रिसालतहू, और अगर आपने इस तबलीग में कोई कोताही की तो गोया कि आपने फरीज़ रसालत में कमी की। यानी आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की तंबीह है इसमें कि अगर आपने इस काम को ना किया, इस पैगाम को आम ना किया जो आपकी तरफ भेजा गया, तो गोया कि फिर आपने इस फरीज़े रसालत में कमी की। इसी तरह नबी सल्लम की हैसियत का बयान करते हुए फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व नज़ीरं व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 35 है, ये 46 नंबर की आयत है। ए नबी, हमने तुम्हें खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला, बहुक्म इलाही अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला और सराजे मुनीर बनाकर भेजा है। यानी आपके अंदर ये सारे वसफ मौजूद थे। फिर सूरह फुरकान आयत 56 में आता है, वमा अरसलनाका इल्ला मुबशिरन व नज़ीरा, हमने आपको महज जन्नत की बशारत देने और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। जहाँ तक तबलीगी मिशन के मुहर्रिकात यानी मोटिव्स, इंसेंटिव्स में रज़ाए इलाही के शौक का ताल्लुक है, तो वो नबी सल्लम से बढ़कर किसको हो सकता है? और रज़ाए इलाही का शौक दाइयाना कोशिशों का सर चश्मा है, यानी तबलीग करने की जितनी भी कोशिशें हैं उसका असल सोर्स यही है कि बंदा अल्लाह की रज़ा तलब करे। नबी सल्लम के पेश नज़र सिवाय रब की रज़ा के और कोई चीज़ थी ही ना। ये वो बेपनाह शौक था कि जिसकी खातिर आपने अपनी रात की नींद और दिन का सुकून खो दिया। बस एक ही फिक्र थी कि फरीज़ा तबलीग यूं अदा करूं कि इसका हक अदा हो जाए, ताकि रब की रज़ा मिल जाए। तीसरी अहम सिफत इंसानियत का सच्चा दर्द है। यही वो दर्द था जिसकी बिना पर आपने करिया करिया, नगरी नगरी, महल्ला महल्ला फिर कर तबलीग और दावत का काम किया, यानी आपने ट्रेवलिंग की। याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम मोबाइल प्रीचर थे, यानी आपने एक जगह बैठ के ही सिर्फ प्रीच नहीं की, तबलीग नहीं की, बल्कि आप क्या थे, چل پھر کے تبلیغ کرتے تھے. انشاءاللہ ایک قرآن پاک کی جب آیتوں میں ہم پہنچیں گے ایسی آیتوں پہ, تو آپ کو سارے وہ واقعات سناؤں گی کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کتنے سفر کیے اور کہاں ایک ایک قبیلے پہ گئے اور ایک ایک جگہ پہ جا کے آپ لوگ نے لوگوں کو پیغام دیا, اور پھر اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا اس کو آپ کیسے برداشت کرتے تھے. ماریں کھائیں, چاند سا چہرہ اور گلاب سا بدن زخمی کرایا, یعنی دکھ صدمے تکلیفیں اور برداشت کی. ماریں کھائیں, چاند سا چہرہ اور گلاب سا بدن زخمی کرایا, اور ایک ایک دروازے پر پہنچ کر لوگوں کو آنے والے ہولناک دن سے ڈراتے رہے, اور اس میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی. اخروی کامیابی کی غیر معمولی فکر ہر لمحہ آپ کے پیش نظر رہی. ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ آیتیں رہتی تھیں, مَن یُسْرِفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, سورۃ انعام کی آیت نمبر 16 ہے. جس کسی سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ کا رحم ہو گیا, اور یہ ایک کھلی کامیابی ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 185, فَمَن زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو کوئی آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اور یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی تھی. یعنی یہ چار پوائنٹ جو ہم نے دیکھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی زیادہ موجود تھے, اور آپ ان چیزوں میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے. یہ تو تھیں ایک جنرل قسم کی چیزیں جو اس کام کو کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے پھر انسان دین کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا آپ نے اس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا آپ کے دل میں بھی یہ تڑپ آ گئی ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھتے پڑھتے ہم اپنے آپ کو بھول جائیں. تو چیک کیجئے اپنے دلوں کو کہ کیا ہمارے دل میں یہ تڑپ آ چکی ہے, اس ذمہ داری کا احساس آ چکا ہے, کیا ہمیں اللہ کی رضا کا شوق لگ گیا, کیا ہمیں انسانیت کا درد جاگ گیا ہمارے دلوں میں, اور کیا ہم آخرت میں اس کام کے درجوں کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسی رب سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کام کا شوق ڈال دے, اور ہم اس کام میں خود بھی بڑھیں اور بڑھنے والوں کی مدد بھی کریں, اور جو لوگ اس راستے میں نہیں آئے ہوئے ان کے لیے تڑپ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس چیز پہ لگا دے. میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ کام اتنا خوبصورت کام ہے, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کر رہا ہے. یہی لوگ سوچتے ہیں نا کہ آپ ہمیں پڑھاتے ہیں, آپ ہمیں بتاتے ہیں, آپ ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ کام انسان کے اپنے لیے. فائدہ تو ہوگا, ثواب تو ہوگا, لیکن بتانے کا فائدہ خود کو بھی بہت ہوتا ہے. جتنا زیادہ انسان دوسروں کو بتانے لگتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اپنے دل میں بات گہری اترتی ہے. آپ نے آزمایا ہوگا کہ آپ خود نماز پڑھتے رہے روز, ایک روٹین کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی موقع دے کہ اچھا چلو یہ بچہ ہے یا یہ کوئی یہ نیو مسلم ہے اس کو تم نماز سکھاؤ یا اس نماز کی روحانیت بتاؤ, اس دعاؤں کا مطلب بتاؤ, تو پھر اس دن جو آپ کو نماز سمجھ میں آئے گی نا وہ اس سے پہلے نہیں آتی. بتاتے ہوئے اظہار کے اندر جو لفظ آ جاتے ہیں نا وہ واقعی انسان کے اپنے دل کو بھی ہلا دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تبلیغ کرنے والے کے اندر کون سے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, کون سے وصف ہوں کہ جس کی موجودگی میں پھر یہ کام اچھے طریقے سے ہو. آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس لیے بہت ہے کہ آج کے دور میں تبلیغ ہو تو بہت رہی ہے, دور دورہ تو بہت ہے دین کا, لیکن اثرات نہیں دکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا تھا وہ چند سو گز جگہ سے شروع کیا تھا. مدینہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ تھی, ایک بستی تھی کہ جس کے اندر چند ہزار لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے, لیکن آپ نے وہاں جو کام شروع کیا اس نے کیسر و کسرا کے در و دیواروں کو ہلا دیا. وجہ کیا تھی اور اتنی جلدی آپ کا کام کیسے پھیلا؟ تو کوئی بھی انسان جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ باتیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوں گی کہ کون کون سے وصف ہیں جن کی وجہ سے یہ کام پھر خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. تو پہلی چیز ہے داعی اللہ, اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانا. دوسرا ہے عملی نمونہ, یعنی کہنے والا خود جو بات کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائے. تیسری چیز ہے حکمت و موعظت, वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, तो हिकमत से करें, मौका महल देख के बात करें। तीसरी चीज़ है इज्तमाई तबलीग, यानी टीम वर्क। इनफरादी तबलीग क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे निकलते हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पे तबलीग के क्या असरात हैं, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। और फिर सब्रो इस्तकलाल, सब्र। ये रास्ता मुश्किल है, जब ये मुश्किलात आती हैं तो उसमें कौन है जो जम जाता है और कौन सी चीज़ें जो इंसान को जमा देती हैं। छठी चीज़ कुर्बानी और जानिसारी, ये तो बड़ा ही अहम है। जब तक आपके दिल में कुर्बानियों का जज्बा नहीं पैदा होता, आप अल्लाह के दीन का काम नहीं कर सकते। ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं, भूख कुर्बान करनी पड़ती है, बोलने की यानी सलाहियत है, जो बोलने को दिल चाह रहा है उसको कुर्बान करना पड़ता है, फिर कहीं आप इस काम को आगे करते हैं। और सातवीं चीज़ इस्तकामत और इस्तिग़फ़ार। तब हम एक एक को देखेंगे और उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हम सब के लिए इस इन बातों को सुनना और समझना। तो पहली चीज़ देखते हैं दाई इलल्ला। हमारा ये दावा है कि अल्लाह के नबी सल्लम में ये सब औसाफ बदरजे कमाल पाए जाते थे, यानी आपके अंदर ये सारी खूबियाँ पूरे एक्सीलेंसी के दर्जे पे थीं, और बिलाशुबा आप मुबल्लिगे आज़म थे, यानी आप सबसे बड़े तबलीग करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई इलल्ला थे। आपने जब भी दावत दी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की दावत दी, और आपने अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ कभी दावत ना दी। कुरान मजीद की आयत मुबारका सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 56, वदाईयन इलल्ला, इस पर शाहिद है, यानी कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। आपने लोगों को कौम, कबीले, वतन, खित्ते और इलाके, रंगो नस्ल और किसी फिरके या जमात की तरफ हरगिज़ दावत ना दी। तो ये देख लीजिए पहली चीज़ कि अल्लाह के लिए बुला रहे हो तो अल्लाह की तरफ बुलाओ। हमारे यहाँ एक अलमिया है आज, और वो क्या, काम हम जब शुरू करते हैं तो वो अल्लाह की तरफ बुलाने की नीयत होती है। शुरू में सब यही सोचते हैं। मैं पूरे यकीन से इस चीज़ को कह सकती हूँ कि दीन की हमीयत में या दीन की मोहब्बत में जब भी कोई दीन का काम शुरू करता है तो इब्तदा में नीयत अल्लाह की रज़ाई होती है, इल्ला माशाल्लाह फिर जिनके कोई बुरे अज़ायम हो, लेकिन हमें किसी के बारे में कोई बदगुमानी नहीं करनी है। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिनों के बाद वक्त जब गुजरता है ना, तो फिर वो अल्लाह से ज़्यादा अपनी तरफ बुलाना हो जाता है। मसलन आप इस, ये बहुत ही अहम मौजू है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपकी रहनुमाई इस पर करना चाहूँगी कि ये एक शैतान का ऐसा वार है कि जिसमें वो इल्म वालों को, मुबल्लिगों को फांसता है। शैतान ने हर एक के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स रखे हुए हैं। बेदीन को वो उस तरह नहीं देखता जैसे वो दीन वाले को देखता है। तबलीग करने वाले को वो मुख्तलिफ चीज़ों से, तो हम यही चीज़ देख रहे थे कि किस तरीके से इंसान अल्लाह की तरफ दावत दे। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो अल्लाह के दीन के रास्ते के राही होते हैं, लेकिन बाद में वो बाज़ दफ़ा उस काम को अपना नाम लेने के लिए, नाम से मंसूब करते हैं, आप अपनी जमात से मंसूब करते हैं, अपने गिरोह से मंसूब करते हैं, अपने फ़िरके से मंसूब करते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ एक किसी यानी अनवर काश्मीरी, एक बहुत अच्छे आलिम गुजरे हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, फ़िक़्हे हनफी के बहुत बड़े इमाम थे। तो उनकी जब मौत का वक्त करीब था, बीमार थे, तो कोई उनको मिलने गया तो कहते हैं कि बहुत आजुर्दा से बैठे हुए हैं और बड़े परेशान खुन शक्ल बनी हुई है। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे कि भाई ज़िंदगी ख़राब कर दी, ज़िंदगी ज़ाया कर दी हमने। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी ज़ाया हुई है तो फिर बाकियों का क्या हाल है, आपने तो अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट जो है वो आपने दीन की तबलीग पे गुजारा और अल्लाह का नाम बुलंद किया। तो फिर उस पर उन्होंने कहा नहीं सच, ज़िंदगी ज़ाया कर दी। कैसे, कि हमने दीन का काम तो किया है लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी की तबलीग में दुनिया के बाकी मसलकों पे फ़िक्हे हनफी के मसलक को तारी करने की कोशिशें की हैं, यानी फ़िक्हे हनफी का नाम बुलंद करने की कोशिशें थी, अल्लाह का नाम कम था। अब ये बात मैंने यहाँ क्यों सुनाई आपको कि हम सब अपनी कोशिशों का रुख देख लें। इसी तरह लोग बाज़ दफ़ा अपने नाम के साथ, मिसाल है कि आप दीन का काम करते हैं ना, आप, हम सब दीन की बात करते हैं, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो लग जाती है तो पता नहीं चलता, कैसे परखें? यानी मैं इस पे बहुत गौर करती हूँ कि किसी इंसान का दीन से सच्चा ताल्लुक कैसे महसूस होता है, अल्लाह को देख के, अल्लाह से मोहब्बत करके. वो क्या है, तो मुझे जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई और जिसको मैंने महसूस किया वो ये है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपको हर वो बंदा जो दीन का काम कर रहा है, वो कहीं भी कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आप उसके काम को देख के खुश होंगे, आप उसमें मदद करेंगे, आप दुआ देंगे, आप मुतमईन होंगे, आपकी आंखें ठंडी होंगी कि लोग दीन का काम कर रहे हैं. ये है अल्लाह ताला के लिए, कि अगर सच्चे मानों में अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक है ना, तो हम हर बंदे को दीन का काम करने की बुनियाद पे खुशी से देखेंगे, मोहब्बत से देखेंगे. और अगर हमने दीन का ये मेयार रख लिया ना कि जो मेरे पास आके सीख रहा है तो फिर वही दीन है, और बाकी जो कहीं और जाके सीख रहा है तो फिर ये दीन नहीं, ये फितना है और ये इस तरह की बात है, तो फिर मान जाएंगे ये अल्लाह का दीन नहीं है. मैं देखती हूँ कि लोग नाम लेते हैं कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं और अल्लाह वाले हैं, लेकिन वो अल्लाह का काम करता देख के आपको एक आंख से खुश नहीं होते, उनके दिल जलते हैं. या वो, मैंने लिटरली दीन वालों को गालियां देते हुए देखा है, बददुआएं देते हुए देखा है, आहें देते हुए देखा है, और उनके साथ ये मामला करते देखा है कि अल्लाह पूछेगा इनसे, कैसे पूछेगा? अल्लाह इस बात पे पूछेगा कि तुमने दीन का काम क्यों किया. तो बहरहाल अपने दिल को हमेशा साफ रख के दीन का काम कीजिए, बहुत बरकत होगी खालिस अल्लाह के लिए. दूसरी चीज़ जो है वो अमली नमूने की है. अल्लाह के नबी सल्लम अमली नमूना किस तरह थे, कि आपने पूरी जिंदगी में अपनी दावत और तबलीग के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया, जो फरमाया वो किया और जो किया वही फरमाया, फेल और कौल में पूरी मुताबकत और हम आहंगी थी. नबी सल्लम की निजी, समाजी, कौमी, मुल्की और सियासी जिंदगी इस पर गवाह है कि आपने कभी भी अपनी तालीम के खिलाफ नहीं किया. ये बड़ी अहम बात है, और वो क्या है कि जो बात कर रहा है वो खुद अमल उस पर करता है कि नहीं करता. क्योंकि आप लोगों को नमाज पे दर्स दें और नमाज का वक्त निकलता जा रहा हो और आप नमाज ना पढ़ें, तो आपकी बात का असर कोई होगा? आप लोगों को अल्लाह की बात को सारी बातों से ऊपर करने की बात करें और जब आपकी अमली जिंदगी में बात आए तो आप कहें क्या करें, अब खानदान को तो देखना है, बिरादरी को तो देखना है. ये एक ऐसा कॉल और फेल का तजाद होता है कि जिसको इंसान फिर ना महसूस करे तो फिर आखिर में उसका नतीजा एक ही निकलता है कि फिर उसका काम रुक जाता है. अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लें, तो हमें भी अपने अमल को देखना है. हर बात जिस पे आप दूसरों को कह रहे हैं उसके साथ आप अपना अमल खुद जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बात ज़्यादा मौसर होगी. नबी सल्लम के पास एक दफ़ा एक औरत आई तो बच्चे को लेके आई, तो कहने लगी कि इसको बताइए कि मीठा ना खाया करे. तो आपने फरमाया कल लेके आना. अगले दिन ले गई तो आपने बच्चे को समझा दिया. तो औरत ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लम यही बात थी तो आप कल भी कर देते, आज क्यों की? कहा कल मैंने मीठा खाया हुआ था तो मैं उस बच्चे को कैसे कहता जबकि मैंने वो काम खुद किया हुआ था. तो अगर ये मेयार हो जाए ना इंसान का अपने आप को परखने का, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत आती है. तीसरी चीज़ है हिकमत और मोइज़त. मोइज़त वास से है बुनियादी तौर पे, यानी जहाँ तक हिकमत और मोइज़त का ताल्लुक है वो आपकी तबलीग का तुर्रा इम्तियाज़ रही, यानी बड़ी अहम चीज़ थी आपकी तबलीग में. आपकी तबलीग इस आयत सूरत नहल आयत 125, उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, के लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ, इसकी जीती जागती तस्वीर थी. आप तबलीग करते वक्त मुखातिब के मिजाज और नफ्सियात, इल्म और हिल्म, अक़ल और फिक्र, गरज हर बात को पेश नज़र रखते थे. अगरचे आम तौर पर आपके खुतबात मुख्तसर होते क्योंकि आपको जवामेउल कलिम अता हुए थे. जवामे जमा है, यानी जमा की जवामे, और कलिम कलमा की जमा है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि कंसाइज, टू द पॉइंट. आप छोटी बात कहते और उसमें बहुत बड़ी बात होती, ये आपकी एक खूबी थी. मगर मुखातिब के जज्बात तो एहसासात का बहुत ख्याल रखते और हमेशा लीनत और नरमी से काम लेते. लीनत वही लीन है, तजवीद में आपको जो हरूफ लीन पढ़ाए जाते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम बात करते थे लेकिन हिकमत से करते थे। तबलीग कैसी थी आपकी? हिकमत वाली, और थोड़ी वक्त बात करते लेकिन माना ज्यादा देते। बहुत प्यारी दो दो लफ्जों की हदीसें हैं, तहादु तहाबू, तोहफा दो हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी, यानी दो लफ्जों में अपने पैगाम पहुंचा दिया। फिर इसी तरह आप देखिए, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी वसकीलतानी फिल मीजानी, कितना रब्त है ना। छोटी सी बात जिसको बड़े खूबसूरत लफ्जों में आप फरमाया करते थे। आपकी हिकमत की एक मिसाल क्या है कि एक शख्स ने नासमझी में मस्जिद में पेशाब कर दिया, सहाबाए कराम इस पर पिल पड़े, फरमाया इसे छोड़ दो और पेशाब पर पानी बहा दो, क्योंकि वो आराबी है और अभी इसे मालूम नहीं कि मस्जिद में पेशाब नहीं किया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिकमत और मौइज़त से मसले को सुझा दिया, यानी ये आपके एक मौके पर ऐसा हुआ था और आप हिकमत से जब बात करते थे कि जिसके साथ थे, फिर असर क्या होता था कि लोग आपके आला अखलाक की वजह से भी आप दीन की तरफ आने लगते थे। आज अफसोस की बात यह है कि दीन का काम तो बहुत है लेकिन हिकमत से खाली हो गया। लोहा गरम देख के चोट लगाई नहीं जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जज्बाती तकरीरें की जाती हैं और इस तरह की बात लोगों तक पहुंचाई जाती है कि इश्तियाल आए और लोग भड़क उठें। वो एक जोश से उठते हैं और झाग बन के बैठ जाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा इसी चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि बात वहाँ की जाए जहाँ ज़रूरत हो, वैसे की जाए जैसे करने का फ़ायदा हो। बाज़ दफ़ा तबलीग करने वाले लोगों को दीन से रोकने वाले भी बन जाते हैं, जबकि वो हिकमत के साथ काम नहीं करते। अब देखिए कि हिकमत के साथ काम करने वाले जो होती है ना, वो एक माँ भी हो सकती है। हम जब कहते हैं ना मुबल्लिग तबलीग, तो लोग एकदम ये सोचने लगते हैं, अच्छा ये टीचिंग का कोर्स हो रहा है, ये टीचर्स की बात है, अच्छा ये कोई पढ़ाएगा तो उसको सिखाने, नहीं, वो आपको अलग किताब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह एक। लेकिन इस वक्त हम में से हर एक सोचे, एक माँ है, क्या वो मुबल्लिगा नहीं होती अपने बच्चों को? बच्चा तो माँ के पेट में है तो माँ उसको तबलीग कर सकती है, उसके साथ अपना मामला कर सकती है। क्या एक बीवी मुबल्लिगा नहीं होती? क्या एक बहन भाई को अच्छी बात नहीं कहती? हम में से हर बंदा एक मुबल्लिग है। अल्लाह ताला ने तो उम्मत मुस्लिमा को फरीजा ही ये दे के भेजा था कि तुमने इस पैगाम को आम करना है। कितनी ही माएँ जो गैर हिकमत अमली से बच्चों को अपने से दूर कर देती हैं। आज माँ और बच्चे के ताल्लुकात क्यों बिगड़े हुए हैं कि माँ को पता नहीं कि बच्चे को कहाँ टोकना है कहाँ रोकना है। उसके दोस्त आए हुए हैं, वो अपने बड़े जोश में अपने दोस्त को घर लेके आ रहा है और माँ उसके सामने उसको डांट देती है, माँ उसकी इज्जत नहीं करती, अहमियत नहीं देती, सबके बीच में बच्चे को डांट देना। तो ये सारी चीज़ें इंसान को क्या चाहती हैं कि हिकमत के साथ बात की जाए ताकि फिर दूसरा बंदा उस बात से फ़ायदा उठा सके। फिर इसी तरह आपके वाज़ और तबलीग के दौरान कभी कोई आदमी उठ कर ना गया, इसके तीन बड़े सबब थे। एक, तबलीग का पुरतासीर होना, दूसरा बर मौका बर महल बात करना, और तीसरा जामे और टू दी पॉइंट बात करना। कितनी प्यारी बात है। आज हम कहते हैं कि लोग खुतबे में आते नहीं, लोग तकरीरों में आते नहीं, स्पीच में आते नहीं, क्या इसकी इन तीनों में से कोई एक वजह तो नहीं होती? अल्लाह के नबी सल्लम का हाल क्या था कि एक दफ़ा कोई आपकी बात सुनना शुरू कर देता था फिर नहीं जाता था। हम ठीक है, जो नहीं आता वो नहीं आता ना, उसने तो सुनी नहीं, उसने तो वो चीज़ चखी नहीं, लेकिन एक अच्छा दाई दीन और एक अच्छा अल्लाह की बात करने वाला कौन है कि जब बात करे तो लोग उसकी बात सुनने के बाद जा ना सके। वो सोचें तो ये कि अच्छा चलो चंद मिनट के लिए जाती हूँ, लेकिन फिर वो वहाँ से हिल ना सकें। यही है एक अच्छा मेयार, और अल्लाह के नबी सल्लम इस मेयार पे पूरे उतरते थे। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग हमारी यानी महफिलों में क्यों नहीं आते, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हम नाम ले ले के उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, उनकी बुराइयां बयान कर रहे होते हैं, और मैंने देखा कि लोग इस तरह की अजीबो गरीब मिसालें देते हैं। यानी मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगी, सिर्फ इस नीयत से, किसी का नाम नहीं और आपको भी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि लोग किस तरीके से फिर मिसालें देते हैं जिसकी वजह से लोग हटते हैं ना। किसी के दर्स में थी तो वो मिसाल दे रही थी औरतों के पहनने ओढ़ने पे, तो कहने कुछ कहने कुछ आई डोंट नो, कोई ऐसी ही बात हो रही, तो कहने की ये पर कटी कबूतरियां बन के जो फिरती हैं। अब आप सोचिए कि एक मिसाल दी ना, कितनी बुरी मिसाल दी कि अब औरतें आधी बाजुओं पे बातें हो रही हैं या कोई औरतों के उठने बैठने पे बात हो रही है। अब मिसाल है कि उस महफिल में कोई बैठा है, कोई नया बंदा ही आ गया, तो क्या होगा? एक किसी ने अपना वाक्य शेयर किया कि वो किसी जगह गई और अपने साथ किसी और को भी ले गई हैं, वो खुद भी थी तो उन्होंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी। कह रही हैं जब वो गई तो उस वक्त स्पीच कोई और थी, कोई मौजू चल रहा था, लेकिन जूं ही वो मुबल्लिगा जो थी उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ी तो उसके बाद उन्होंने पूरी स्पीच जो थी वो हाफ स्लीव्स पे कर दी। और वो कह रही थी कि उन्होंने वहां से उठते हुए यही कहा कि मैं आज के बाद नहीं आऊंगी। तो ये क्या है कि लोगों के सामने इस तरीके से बात करना कि जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि आप कभी भी लोगों को डायरेक्ट टॉन्ट नहीं करते थे, नाम नहीं लेते। और अल्लाह ताला ने ये मिजाज सिखाया, अरअईतल्लज़ी, क्या तुमने देखा उसको, हुवल्लज़ी, यानी नाम नहीं। एक शख्स के सिवा पूरे कुरान पाक में किसी का नाम नहीं है कि जिसको रुसवा किया हो, क्योंकि उसने रुसवाई की हद कर दी थी, अबू लहब। इसके अलावा किसी का नाम नहीं। तो लिहाजा ज़रूरत है कि इस बात की कि अपने माहौल को ऐसा बना दिया जाए कि हर एक खुशी से वहाँ बैठ सके और मुतमईन महसूस करे। जब कोई बात करता तो आप खामोश हो जाते, किसी की बात को ना काटते। ये पीछे एक पैरा रह गया। नबी सल्लम मुखातिब के मिजाज और हालात को पेश रखकर तबलीग फरमाया करते थे। एक शख्स आया और उसने आपके सामने अपने चंद गुनाहों का जिक्र किया। आपने फरमाया तुम एक काम करो, बस झूठ तर्क कर दो। चुनाच इसने ऐसा ही किया, जिसकी बदौलत इससे तमाम बुराइयां आपसे आप जाती रहीं। यानी झूठ छूटा तो उसने सारी ही चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि उसको लगा कि कल नबी सल्लम मुझसे पूछेंगे क्या शराब पी थी, तो क्या कहूँगा, पी थी, शर्म आएगी या हद लगेगी, छोड़ दी। जिना को दिल चाहा तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, और एक बात से सारे काम दुरुस्त हो गए और वो सीधा हो गया, और यानी वो बाकी सारी चीज़ों से उसकी जान छुट गई। जब कोई बात करता तो आप खामोश हो जाते, किसी की बात को ना काटते, गुफ्तगू सादा और इखलास में डूबी हुई होती, तकल्लुफ और तसन्नो नापसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में आसान और पुरकशिश अंदाज इख्तियार फरमाते, जन्नत की खुशखबरी सुनाते, लोगों को भगाने और नफरत दिलाने के अंदाज को नापसंद फरमाते। आपका ये इरशाद कितना प्यारा है, यस्सिरू वला तुनफ्फिरू। एक जगह आता है बशिरू वला तुनफ्फिरू, कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, इन्हें दीन से नफरत ना दिलाओ। गरज आप अवाम को हर सूरत में इस्लाम के करीब लाने की कोशिश करते। यहाँ भी बड़ी काबिल गौर बात है, वो क्या है कि आपका अंदाज बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम बात बना के करते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं, तसन्नो लगता है, मसनूईपन लगता है। कभी आप भी अपने आप को चेक करें तो आप अपना खुद रिकॉर्ड करें और फिर सुने। सबसे ज़्यादा आपकी बेहतरीन इसलाह जो कोई कर सकता है वो आप खुद है, क्योंकि इंसान इतना पिकी होता है अपने मामले में कि एक एक चीज़ को गौर से देखता है। तो इसके लिए अपने आप को यानी हमेशा बचाना चाहिए, इखलास आएगा ना तो जुबान पे खुद ही अच्छी बातें आएंगी। बाज़ लोग किसी का स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, कोई ऐसे बोलता है मैं भी ऐसे करूं। बाज़ लोग सोचते हैं अच्छा चलो हम नरम बातें कर लेंगे, हमारी भी ठीक होंगी। मैं इसको हमेशा ऐसे सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि लोग कितनी गलत चोट डालते हैं ना। आपकी जुबान कब नरम होगी? आपकी जुबान मुड़ने से नहीं होगी, आपका दिल नरम होगा। आप अपने दिल में इंसानियत का दर्द पैदा कर लें, माँ वाली शफकत महसूस करें आप लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए आप तड़पें, फिर देखिए जो आपकी ज़ुबान से फूल झड़ेंगे। और आप अगर दिल खोटे हैं ना, और दिल खटोर हैं, कठोर हैं, दिल सख्त भरे हुए हैं, लोगों से नफरत कर रहे हैं और ज़ुबान से आप मीठी भी बात करेंगे तो वो बल्कि चापलूसी लगेगी। सादी बात करनी चाहिए, सीधी सादी, जिसमें वाकई के सुनने वाला आपकी आपके दर्द को महसूस करें। हाँ, पूर्व दर्द बात जो होती है ना, ये दिल में जाती है। वाकई इंसान जब बात करता है और उसके अंदर अगर दर्द होता है तो उसके लफ्ज़ों से दिखता है, सुनने वाला ग्रैब कर लेता है इस बात को कि अच्छा ये क्यों मुझे सुना रहा है, इसको इतना तकलीफ़ है मेरी इस बात की, चलो मैं सुनती हूँ। और बाज़ दफ़ा हम इतना ज़्यादा जोशीला अंदाज कर लेते हैं कि जो लोगों के कानों के ऊपर से गुजर जाता है, यानी कानों पे तो वो बोझ बनता है लेकिन दिल में नहीं आता। सादी सी बात करें और दीन का वो रुख लोगों के सामने पेश करते कि जिससे वाकई लोग आप की वजह से दीन के और करीब आते। फिर अगला पॉइंट है इज्तमाई तबलीग। इज्तमाई किसको कहते हैं? म्यूचुअल मतलब प्रीचिंग, यानी सबके साथ मिलकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा तौर पर बहुत तबलीग फरमाई, लेकिन दीन ने हक की नशरो इशात के लिए इज्तमाई तबलीग की सही भी फरमाई, यानी कोशिश की, और मुबल्लिगीन की एक मुनज़्ज़म जमात तैयार फरमाई जिन्होंने बाकायदा फरीज़ा तबलीग अदा किया। और वाकयात से पता चलता है कि बहुत से देहात और इलाके सहाबे कराम की तबलीगी मुसाई मुसाई कहते हैं कोशिश से हल्का बगोशे इस्लाम हुए, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसको कैसे देखेंगे हम? अब देखिए कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप वन ऑन वन बेस पे बात करते हैं ना किसी से, एक बंदा बात करता है तो एक बंदा सामने मुखातिबीन में होता है, या वो लोग जो पहले से ही बात सुनने के लिए तैयार है, चले जी हमें दर्स दीजिए या हमारे पास बात कीजिए या हमें पढ़ाएं, वहाँ तो आप एक भी बात कर लेंगे तो वो बात चलती है। लेकिन बाज़ लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। उसका तरीका क्या हो सकता है? यदि मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल टिप देना चाहती हूँ, और मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी इस काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। मसलन जैसे आप देखिए कि इज्तमाई तबलीग है, जैसे आप तीन चार दोस्त हैं जिन यानी समझें कि आपका 10 दोस्तों का ग्रुप है ना, आपका एक ग्रुप है, 10 पीपल हैं। अब उन 10 में से आप 3 लोग कुरान की क्लास लेने लग गए, अब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है और आपको समझ आती है। अब आप पीछे जो आपके 7 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, आप उनको सिखाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप कुर्सी में से जाएं और वहाँ बैठें और बाकियों को कहें तुम सीधे बैठो और टेक ना लगाओ और इस तरह करो? कतन नहीं। उसका तरीका क्या होना चाहिए? आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा फुलां मौके पे अब मिलेंगे ना, शादी पे मिल रहे हैं या किसी के घर कोई डिनर है या लंच है कुछ, तो फिर ऐसे हम बातों ही बातों में बात करें। एक बात मैं कहूँगी, थोड़ी सी अच्छे तरीके से बात करते, फिर थोड़ी सी इस मौजू पे तुम बात करना, इस पे तुम करना, यानी जिसको कहते हैं ना बातों ही बातों में। उससे क्या होता है कि अगले पे बोझ भी नहीं पड़ता, और आप देखिए कि लोग खुलने लगते हैं ना, लोग इस तरीके से दीन की तरफ फिर महसूस करते हैं उस चीज़ को कि जो आप लोगों ने नहीं किया होता। और मैंने देखा है कि जब हम वाकई हिकमत अमली से बात करते हैं ना, तो नतीजा क्या निकलता है कि लोग आपके पास आते हैं। और आजकल मैं इस चीज़ को बहुत सफ़र कर रही हूँ, जब से रबीउल अव्वल का महीना आया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मांग बढ़ गई। यानी मैं सोचती हूँ कि जैसे सीजन्स होते हैं ना दूसरे लोगों के, इस तरह दीन का काम करने वालों की मांग बढ़ती है। और रमज़ान के बाद अभी लोग कुछ ज़्यादा हुए तो बहुत ही ज़्यादा, यानी एक चल रहा था हेक्टिक और दर्स और वाज के लिए, तो इन्हीं दिनों में मेरे सामने ऐसे ऐसे मंजर आते हैं कि मैं वाकई अल्लाह की कुदरतों पे हैरान हो जाती हूँ। कि लोग बाज़वा ऐसी रस्में बना के बैठे होते हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं। यानी मैं अपने सेल फोन पे किसी का छोड़ा हुआ मैसेज ही आपको रिपीट कर दूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने एक दिन अपना मैसेज सुन रही थी तो कोई लोग एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं, मुझे तो नहीं पता होता कहाँ से मिलते हैं, तो बहरहाल किसी का नाम था अपना, अच्छा मेरा नाम लेके, अच्छा वो असल में वो मैंने मिलाद पढ़ाना था तो मुझे किसी ने आपका नाम दिया तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करें ना। तो मुझे इतनी यानी ऐसे लोगों पे भी मोहब्बत आती है और मेरे दिल में उनके लिए एक तड़प महसूस होती है कि अल्लाह कितने ये लोग हैं ना। यकीन करें ऐसे ही इन दिनों में एक जगह मेरा दर्स था कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जब मुझे वो लेने के लिए आई जिनको उन्होंने भेजा, मैं उनको देख के हैरान थी कि हम दर्स में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जो उनके हुलिये थे, दर्स भी दूर का था, चलते गए रास्ते में उनकी बातें मैं सुनती रही सुनती रही। मैं जब वहाँ गई तो पूरी महफिल सजी हुई थी, लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट रुकती हैं। वो अब उनकी सास थी बेचारी जो ये काम कोई करवा रही थी, तो वो बड़ी परेशान सी थी, वो कह रही हैं कि मैंने सलाम पढ़ना है फिर ख़त्म करूंगी। मैंने कहा जो करना है कर ले, मैं तो इधर हूँ, मैं तो अब अंदर आऊँगी। खैर अभी मैं बुरका वगैरह उतार ही रही थी तो उन्होंने कहा आज इजाज़त मिल गई आप बैठे। यकीन करें कि एक हमारा जो दर्स 1 घंटा सवा का हुआ, लेकिन मेरे लिए भी वो एक ऐसे लम्हे बड़े यादगार होते हैं। सब नए चेहरे, अल्ट्रा मॉड यंग लड़कियां थी ज्यादा, यानी यही एक एक दो दो बच्चों वाली, लेकिन जितनी मोहब्बत से उन्होंने सुना, मैंने पूरा नबी सल्लम पे ही दिया, लेकिन फिर एंड पे यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसके बाद से अभी तक 1 वीक में 3-4 उनके अपॉइंटमेंट्स बन चुकी हैं कि हमें भी कराना है और हमें भी कराना है। बात वही कही जो कहनी थी, लेकिन मैंने किसी चीज़ को छेड़ा भी नहीं कि आप क्या करें, और वही मुझे छोड़ने भी आई और वो बड़ी खुश थी कि आपने बड़ी अच्छी बातें की। और वो बहू का दिल डर रहा था कि पता नहीं मेरी सास का क्या रवैया होगा। हक बताएं, दर्द से बताएं, मोहब्बत से बताएं, हिकमत अमली से बताएं, और बड़े सीधे साधे अंदाज में बात करें, आप खुद देखेंगे कि लोग आपकी बात को मानेंगे। और उनके यानी बात दोबारा बुलाने पे जितनी मुझे खुशी हो रही है, शायद मुझे किसी और की ना हो, क्योंकि जब ऐसे लोग दीन पे आते हैं जिन बेचारों तक दीन पहुंचा ही नहीं है, तो फिर आप सोचिए कि वो लोग तो ज्यादा ही उनके लिए एक अचीवमेंट है ना। तो बहरहाल हम सबको इस चीज़ की कोशिश करनी है कि बड़ी मोहब्बत से और इखलास से बात करें। पांचवी चीज़ जो एक दीन के दाई के बीच में होनी चाहिए वो सब्र और इस्तकलाल है। सब्र और इस्तकलाल एक दाई इलल्लाह की बड़ी अहम और असासी सिफत है। अल्लाह ताला का खास नबी सल्लम को इरशाद है, सूरत अलहकाफ की आयत नंबर 35 है, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, बस सबर इख्तियार करो जिस तरह साहिबाने अज़्म इस्तक़लाल सबर से काम लेते रहे। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 10 है, वसबिर अला मा यकुलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, और जो तकलीफ़ दे बातें वो करते हैं इन पर सबर कीजिए और इनसे अच्छे अंदाज में किनारा कशी कीजिए। और सूरह यूनुस आयत 109 में फरमाया, वत्तबी मा यूहा इलैका वस्बिर, यानी वही की पैरवी कीजिए और सब्र कीजिए। कुतुब है सीरत, यानी सीरत की किताबें, और तारीख शाहिद है, और हदीसे शरीफ में भी इसकी काफ़ी तफसील मौजूद है कि नबी सल्लम जिन जिन दुश्वार गुजार रास्तों और मसाइब व आलाम की कठिन राहों से गुजरे वो इस कदर लर्जा देने वाले थे कि इनके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम आपकी जाते सतू आप लेकिन सलाम आपकी जाते सतूदा सिफात पर, यानी ये जो इस लफ्ज़ को आप स्किप कर दें, सलाम आपकी जात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सबर का दामन छोड़ा न कभी आपके पाए सुबात और इस्तकलाल में लग्जिश आई। फिर आगे इन्होंने लिखा है, अल्फा अल्फा मर्रतें बाद कुल्ली जर्रतें, यानी ये एक शेर के अंदाज में लिखा है कि आप पे यानी हजार हजार बार सलाम हो। तो हकीकत ये है कि दीन के राही को सबर की बहुत ज़रूरत है। मैं कभी भी देखती हूँ जब लोग दरसो वाज में बुलाते हैं तो कितनी मोहब्बत देते हैं ना, और इतना एहतराम और मोहब्बत से बुलाते और बैग भी पकड़ रहे हैं और सामान ले रहे हैं और इतनी एक अजीब फीलिंग होती है। तो मुझे कभी कभी इस चीज़ पे बहुत रोना आता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लम जब तबलीग के लिए निकलते थे तो लोग पत्थर फेंकते थे, कांटे फेंकते थे। आज हम इस दौर में भी अगर अल्लाह के दीन का काम ना करें कि जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर हमारी ही एक बदबख्ती है। लेकिन हकीकत है कि बाज़ दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान को फिर सब्र करना पड़ता है, और इस्तकलाल यानी जम जाना, मूव नहीं होना अपनी जगह से बल्कि उस काम को करते रहना है। छठी चीज़ क्या है? कुर्बानी और जान सारी, इसका जज्बा होना चाहिए। नबी सल्लम ने तबलीग इस्लाम की राह में जिस कुर्बानी और जान सारी का मुजाहरा किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो मुबल्लिग दूसरों को जोहद और तकवा की तलकीन करता है खुद इस पर भी जोहद और तकवा का रंग गालिब होना चाहिए। जोहद किसको कहते हैं? दुनिया की मोहब्बत ना हो इंसान के दिल में, लालच ना हो, ऐसा गालिब कि ना वो दुनिया से दिल लगाए ना माल दुनिया से प्यार करे। जब हम नबी सल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि आपने मुर्दार दुनिया से कभी दिल न लगाया और न कभी दुनिया का माल जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वो वक्त भी आता है जबकि दौलत की फरावानी है, रुपए की रेल पेल है, मगर आप सोना चांदी और दिरहम और दीनार दूसरों में बांट देते हैं और ख़ुद खाली हाथ रहते हैं। आपने जब इंतकाल फरमाया तो मामूली सा असासुल बैत छोड़ा, यानी घर का सामान। नबी सल्लम का ना कोई बंगला था, ना कोठी, ना अलग कोई ड्राइंग रूम था, ना स्लीपिंग रूम, ना ड्राइंग रूम। आपका दौलत कदा भी सादा था और बिस्तर भी सादा। आपकी सवारी गदा या खच्चर हुआ करती थी, नींद आती तो फर्श पर बिछी चटाई पर सो रहते। आप में से शायद कोई सोच रहा होगा कि उस दौर में ये सब होता ही नहीं था, वहाँ दौलत नहीं थी और वो कुछ नहीं थी, तो ये बात नहीं है। उस दौर में भी तईशात थी। आप देखिए कि आज तो हम लकड़ी के ऊपर गोल्डन पेंट करके उसको गोल्डन कलर में बदल लेते हैं ना, उस दौर में बादशाहों के पास सोने चांदी के छप्पर घट होते थे। तो असल बात यह है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लम भी इन चीज़ों के साथ लगे रहते तो फिर वो दीन का काम कैसे करते। यही चीज़ है ना। फिर लिखते हैं कि अगर गौर से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एहसार और कुर्बानी है कि तमाम ज़राए मौजूद हों, कुल्ली इख्तियारात हासिल हों, कदमों में दौलत हो मगर इसे हाथ तक न लगाया जाए, सादा और तकल्लुफ से खाली जिंदगी बसर की जाए, ये अमल बज़ाहिर मामूली नज़र आता है मगर हकीकत में बड़ा मुश्किल और गैर मामूली अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में जहाँ तक बन पड़ा अल्लाह की राह में किसी माली और जानी कुर्बानी से दरेख नहीं किया। राह हक में हर किस्म का इसार और कुर्बानी देने के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रहे और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भर न सका, और यही वो इसार और कुर्बानी है जिसका आगे चलकर सहाबे कराम पर असर पड़ा और वो किसी कुर्बानी से कभी पीछे न रहे। सीरत और तारीख की किताबों में आपके रुख परवर और ईमान अफरोज़ वाक़ियात बहुत से हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोहबत और मुकद्दस तालीम का ये असर था कि देखते ही देखते शश जहद, यानी पूरी शश कहते हैं छः को, और जहद मीन डायरेक्शन, यानी छः डायरेक्शंस जो हैं उन सब में इस्लाम के गुलगुले बुलंद हुए, मुराद के हर तरफ इस्लाम का नाम पैदा हुआ, बढ़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग और नशर व इशात के लिए जो अनथक और सरतोड़ कोशिश फरमाई, और नामसाइदा हालात, यानी वो हालात जिसमें मेहनत करनी मुश्किल हो, ये भी सादा से है, यानी मुश्किल हालात का बखंदा पेशानी मुकाबला किया, वो बजाय खुद बहुत बड़ी कुर्बानी और इसार है। भूख प्यास में दूर दराज के सफ़र करना और अपनों में नहीं बल्कि अपने दुश्मनों में जाकर तबलीगे हक करना, यकीनन ये आप ही का काम हो सकता है।
7th पॉइंट है इस्तेयानत और इस्तिग़फ़ार। हम इसको देखेंगे। इस्तेयानत वही लफ्ज़ है जो हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो नस्तईन और इस्तेयानत एक ही लफ्ज़ है, आइन व नून से औन एयानत मदद को कहते हैं, यानी मदद तलब करना। और इस्तिग़फ़ार गैन फारा से गफरा, बख्शिश ढांपना, और इस्तिग़फ़ार क्या होती है, गुनाहों की बख्शिश तलब करना। जहाँ भी अलिफ सीन ता आ जाएगा तो फौरन आपको तलब के मानी याद आने चाहिए। टू सीक का मानी आता है, यानी अल्लाह के दीन के काम करने वालों को अल्लाह ही से मदद तलब करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दयानत और इस्तिग़फ़ार का ये कैफ है, कैफ मीन कैफियत, हालत, कि इतना कुछ करने के बावजूद अपनी किसी कोशिश पर ना तो कोई फ़ख्र है ना बड़ाई, बल्कि सर झुकाए हुए और हाथ उठाए हुए इस दयानत और इस्तिग़फ़ार में मुनहमिक रहते हैं। मुनहमिक मीन मसरूफ़ रहते हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में इस जुमले का क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने दिन रात अल्लाह के दीन के लिए सर्फ किया, इसके बावजूद आपके दिल में आजजी थी, को बड़ाई नहीं थी, को फ़ख्र की बात आपके अल्फाज से नहीं मिलती थी कि हमने तो ये कर दिया और हम तो ये करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें अल्लाह की नेमतों को दूर कर देती हैं। और आपका हाल क्या होता था, अल्लाह के सामने कैफियत क्या थी, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए परवरदिगारे आलम, हम हर गाम तेरी ही बंदगी करते हैं, यानी हर रास्ते में चलते हुए, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अपने काम के लिए जब निकलते हैं तो मदद तुझसे ही तलब करते हैं, वो दीन का काम हो, वो दुनिया का काम हो, वो आखरत का हो, वो करीब का हो, वो सब तेरे ही भरोसे पे हम करते हैं। इधर से हुक्मे रब्बानी होता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। अपने रब की तस्बीहो मनाजात कीजिए और इससे तौबा और इस्तिगफार कीजिए, यानी तस्बीह तो हो गई तारीफ, और मनाजात क्या है, आजजी, ले जाना, किसी के साथ मोहब्बत से बात करना, आजिज मिजाज होना, जैसे एक बच्चा माँ से कैंडी लेते हुए करता है, मम्मी प्लीज आई वॉन्ट दिस, प्लीज मम्मी, यानी इंसान अल्लाह ताला से इस तरीके से ताल्लुक कायम करे कि पुकार देते हुए उसके अंदर एक लजाजत भी हो और एक लाड का अंदाज भी हो। ये हुक्म आने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा इज्जो इन न्याज बन जाते हैं। सरापा कहते हैं सर से पांव, लफ्ज़ को देखिए, सरापा, सरा में से सर क्या है, सर, और पा क्या है, पांव, सरापा। पूरे सर से पांव तक, यानी मुराद है आपका जिस्म, इज्जो इन नियाज बन जाते, यानी आजजी करते और नियाजमंदी करते। आप उठते बैठते चलते फिरते जाते आते सोते जागते पढ़ते रहते। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फिरली, सुभानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फिरली, अल्लाहुम्मग़फिरली, इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। मुसनद अहमद की ये रिवायत है। ए अल्लाह तू पाक है, हम्दो सना तेरे लिए है। ए अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे, तू पाक है। ए हमारे रब, हर किस्म की हम्दो सना तेरे लिए है। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ये कलिमात बकसरत पढ़ा करते थे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह तू हर ऐब और कोताही से पाक है, हम्दो सना तेरे ही लिए है। मैं तुझसे अपने कसूरों की माफ़ी तलब करता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। अब देखिए कि ये नमाज के अंदर भी दुआएं हैं, सजदे के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआओं में ये दोनों दुआएं मिल जाएंगी आपको, ताकि अल्लाह ताला के साथ बंदे का ऐसा मामला बन जाए, एक ऐसा रब्त हो जाए, ऐसा जोड़ हो कि जब बात करे तो ऐसे लगे कि वो बात सीधी अल्लाह ताला तक पहुंची है, फिर ही अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत होती है। ये जुबान से इस्तिग़फ़ार है, और हकीकत इस्तिग़फ़ार ये है कि आदमी अपनी खताओं और लग्जिशों को देखकर लर्जा तारी हो जाए, कि आदमी पर अपनी खताओं और लग्जिशों को देखकर लर्जा तारी हो जाए और दिल कांप उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा इसी जुबान और जिस्मो जान से होती थी। सही मुस्लिम में है कि आपने अपनी उम्मत को भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की तलकीन फरमाई, फरमाया या अय्युहन्ना सुतूबू इलल्लाह वस्तग़फिरू फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि 100 मर्रा। ए लोगो अल्लाह की तरफ तौबा करो और इससे तलब पे मग़फ़िरत करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। तो इससे हमने क्या सीखा कि अल्लाह के दीन का काम करने वालों के अंदर दो सिफात बहुत कसरत से होनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना और अल्लाह ताला की मदद तलब करना, क्योंकि ये काम आसान काम नहीं है। मदद अल्लाह की आती है तो फिर इतना आसान हो जाता है कि लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आसान काम है ही नहीं, लेकिन अल्लाह की मदद ना आए तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कौन है जो इन बातों को कबूल करे, जो लोगों से उनकी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल की बातों को और सारी चीज़ों को छुड़वा दे। तो लिहाजा हमारे लिए अमल की बात इसमें यही है, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कभी हमने ये नहीं कहना कि मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आजजी भी रखिए और अल्लाह से ताल्लुक़ भी मज़बूत रखेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। फिर अगला टॉपिक है तबलीग में उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुबल्लगीन अगर 1 घंटा तबलीग कर लें तो 8 रोज़ तक इस पर इतराते रहते हैं और फ़ख्र करते रहते हैं। ऐसा भी होता होगा, और नहीं समझते कि फरीज़ा तबलीग में इनसे कोई कोताही भी हुई होगी और इस नेकी पर नाज़ करते रहते हैं। मगर कायनात आलम के मुबल्लिग़ आज़म बावजूद इसके कि इनकी पूरी ज़िंदगी तबलीग ही से इबारत है, इबारत लफ्ज़ भी गौर कीजिएगा, इबारत आइन बारा से आबरा, उबूर करना किसको कहते हैं, पुल को पार करना, कहते हैं ना फुलां ने पुल पार कर लिया, या फुलां को फुलां बात पे उबूर हासिल है, क्या यानी आपने उस तहरीर को पार कर लिया। तो यहाँ क्या मतलब है, पूरी जिंदगी तबलीग से ही इबारत है, यानी आपकी पूरी जिंदगी तबलीग से भरी हुई है, आपने आपकी जिंदगी पे तबलीग को अबूर हासिल हो गया, आप यूं कह सकते हैं। फिर भी सरापा इज्जो इनकिसार बने रहते हैं और लर्जाओं तरसा रहते हैं कि ना मालूम इस अहम और अजीम शान फरीज़ तबलीग का हक अदा हो भी सका कि नहीं, और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और बार बार करते हैं। ہمارے مبلغین کو تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں پوری طرح اسوہ رسول پر عمل کرنا چاہیے. انہیں آپ ہی کے انداز تبلیغ اور طریقہ تبلیغ کو اپنانا چاہیے کہ اسی میں خیر و برکت ہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ جب بھی کبھی اللہ کے حکم سے آپ اس کی بات اس کے بندوں کو پہنچانے کے لیے نکلیں, آپ کو کسی دوسرے کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ دوسروں کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, ان کے سٹائل کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لفظوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ طالب علم بن کے بیٹھے ہیں تو آپ کو استاد کی کہی ہوئی ایک ایک بات فائدہ دیتی ہے. جتنی چیزیں آپ نوٹ کر لیں گے اتنی ہی اچھی ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ وہی چیز مؤثر ہوگی جو آپ کے دل سے نکلے گی. آپ کسی کی ایک ایک لفظ کی بات کو لکھ لیں اور وہی لفظ آپ بولنا شروع کر دیں, وہ اثر نہیں آئے گا. اثر کا بات ہے جو بات آپ کے دل سے آئے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا, پھر اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں, اچھے لفظ کیسے بولیں؟ تو اس کے لیے ایک ہی بات ہے, دل اچھا کر لیں. آپ کے اندر تڑپ آ گئی نا, جس موضوع پہ بات کریں اس کے درد کو اپنے دل پہ محسوس کریں. کہنا کیا چاہتی ہوں, ہو کیا رہا ہے, اس معاملے میں خیر کیا ہے, لوگوں کو بچانا کیسے ہے. چند جملے اپنے سے بول کے بات شروع کریں گے, آپ کے زبان سے ایسے لفظ نکلیں گے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ یہ لفظ بولیں گے. تو انشاءاللہ تبلیغ پہ تو اب بہت, آپ پوری ایک کتاب بھی پڑھیں گے اور الحمدللہ آپ کی کتاب قریب ہے شروع ہونے کے. جو ہی جب یہ پوری ہو جائے گی تو آپ کو ایسی ایسی ٹکس ملیں گے اس میں ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی بات مؤثر ہو سکتی ہے. پھر آخری ٹاپک ہے اس چپٹر کا کہ محمدی نصاب تبلیغ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نصاب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے تبلیغ فرمایا کرتے تھے, پہلی بات, اور محض قرآن اور اس کی تشریح یعنی حدیث بیان کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر بہتر اور پر تاثیر کلام اور کون سا ہو سکتا ہے. قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. پیغمبر علیہ السلام انہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور اس قرآن کی بدولت ان کا تزکیہ باطن فرماتے ہیں, یعنی ان کو اندر سے گناہوں سے پاک کرتے ہیں. تزکیہ کا عمل ڈیول ہوتا ہے, نیکیوں کو بڑھانا اور برائیوں کو نکالنا. یعنی جیسے مالی پودا لگاتا ہے تو بیج ڈالتا ہے تاکہ پودا اگے, لیکن ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کو نکالتا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں تزکیہ میں آتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں صرف نیکیوں کے کرنے پہ محنت کر لوں, کوشش کر لوں, لیکن اپنی برائیاں نہ چھوڑوں, تو یہ آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا. جیسے دعا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی, تو یہ وہی چیز ہے. اس میں تزکیہ کیا آپ نے, اور انہیں محض قرآن اور حکمت یعنی حدیث اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ یہ آپ کا تبلیغی سلیبس تھا کہ جس کے مطابق آپ تبلیغ فرماتے تھے. کسی انسان کی اصلاح کے لیے اس کا تزکیہ اور تطہیر یعنی پاک کرنا نہایت ضروری ہے, اور وہ قرآن حکیم کے بغیر مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس کے علاوہ ضلالت اور جہالت کے پردے چاک کر کے کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کا ٹھوس بنیادوں پر بندوبست ہونا ضروری ہے. تعلیمی اداروں کے علاوہ محلہ محلہ, کوچہ کوچہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا منظم اور معقول انتظام ہونا چاہیے. منظم تو آپ سمجھ گئے نا, آرگنائزڈ, نظم سے. معقول کیا ہے؟ عقل سے. عقل کیا ہوتی ہے؟ وزڈم ہے. معقول کیا ہے؟ جس کو عقل قبول کر لے. بعض باتیں بڑی نامعقول ہوتی ہیں کیونکہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی, یعنی مراد کے پراپر. یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے نور علم و ہدایت عام ہو سکتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا, اگر آج ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے تو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں اس کی اصلاح کی یعنی زیادہ توفیق ملے گی ہمیں, اور اچھے طریقے سے کام کریں گے. اس نہج اور اسلوب سے ہٹ کر جو بھی انداز اپنایا جائے گا اس سے وقتی طور پر سہارا تو مل سکتا ہے, لیکن گمگشتہ راہ قوم کی مستقل طور پر حالت نہیں بدلتی. یعنی لیکن گمگشتہ راہ قوم کی مستقل طور پر حالت نہیں بدل سکتی. مشکل جملہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اگر ہم کوئی اور طریقہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے, تو اس سے आम तौर पे तो बात संभल जाती है, यानी फायदा लगता है वक्ती तौर पे, लेकिन कौमों की हालत नहीं बदलती। मैं इसको इस तरह से कहूंगी कि आज आप देखिए कि इस्लामी निजाम में तालीम को हटा के अगर आप दूसरी तरफ देखें तो क्या होता है। दूसरी तरफ आप देखें कि फन है, फनून है, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। बस अगर आपके बच्चे हैं तो वो सारा दिन जो फनून सीखते हैं ना, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बाज़ दफ़ा दुनियावी तरक्की के बहुत सारे तरीके सीखते हैं, लेकिन आप देखिए कि इन सारी चीज़ों के देखने से क्या कोई मुल्क तरक्की कर लेता है? नहीं करता। ठीक है, ऐसे यानी माहिर पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी कौम को दुनिया और आखिरत की तरक्की के रास्ते सुझाने हैं तो उसके लिए फिर अल्लाह के नबी सल्लम के तरीके तालीम, यानी इस कुरान को सिलेबस में लाना पड़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लम की अहादीस को मानना पड़ेगा। मुझे हैरत होती है कि हम मुसलमान मुल्कों में रहने वाले भी जब अपना सिलेबस बनाते हैं तो उसमें कुरान और सुन्नत की जो रेशो है वो आटे में नमक के बराबर होती है। एक 20-25 सफ़ों की छोटी सी किताब दीनियात के नाम पे या इस्लामियात के नाम पे और भारी भरकम किताबें दूसरी। ये कौमों के बदलने के रास्ते नहीं होते जब तक ये कुरान हमारी रेगुलर तालीम में ना आ जाए। और मैं आप सच सच आप सबको यानी अपने दिल की बात कहूंगी कि हम ये जितनी भी कोशिशें करते हैं ना पढ़ने पढ़ाने की, और सब जहां भी हो रही हैं, औरतों को पढ़ाएं, टीनेजर्स को पढ़ाएं या फलां और फलां, ये बहुत अच्छी कोशिशें हैं। इस हालात के मुताबिक ये एक नेमत है, लेकिन हमारी कौम की तबलीग कब, हमारी कौम की तकदीर कब बदलेगी? जब हमारे स्कूलों में जाने वाले बच्चे ये सीखेंगे, 8-8, 10-10 घंटे जिस इल्म को वो जगह देते हैं, अगर वहाँ ये चीज़ आती है तो आप देखिए कि फिर सोसाइटीज़ बदलेंगी। अभी जो सुनता है वो बदलता है तो वो मुआशरे में अजनबी करार दिया जाता है, लोगों को अजीब लगता है। इसके बरक्स आप देखिए कि स्कूलों में या कॉलेजों में जाने वाली जो मेजॉरिटीज़ होती हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो कसरत लोगों की आपको मिलेगी वो स्कूल कॉलेज में मिलती है, उसकी बात का असर भी ज़्यादा होता है, एफर्ट्स भी ज़्यादा है, माँ बाप कुर्बानियाँ भी देने को तैयार होते हैं, किताबें भी उसकी ख़रीदते हैं, उसके लिए भारी फीसें भी देते हैं, बसों की राइड का सब इंतज़ाम करते हैं ना। इन सारी चीज़ों से ये चीज़ प्रूव हो जाती है बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी कि ये चीज़ें अहम बहुत है। वहां से जो मिलेगा ना उसको जो जहन कबूल करता है वो मुफ्त में मिली हुई चीज को कबूल नहीं करता। आज हमारी कौम का हाल क्या हो गया है? दुनिया की तालीम पे हजारों खर्च करेंगे, 10-10, 20-20, 25-25 मील दूर जाएंगे क्योंकि बच्चे का यूनिवर्सिटी वहां है। माँ बच्चे को छोड़ने और आने और जाने का वक्त लगाती है तो वो कहती है मेरे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं बच्चे को छोड़ना लाना, और कई दफ़ा 100-100 मील बन जाता है एक एक दिन में, सारा दिन सिर्फ बच्चों को स्कूल से लेने और देने। और उसके बरक्स अगर दीन की बात आ जाए तो हम पहले तो देखते हैं कि करीब है कोई के नहीं, करीब नहीं है तो गोया कि अब ज़रूरत ही नहीं रही। फिर दूसरी, अच्छा फ्री हो, तीसरी चीज़ है बुक्स भी ना वहाँ हो, चौथी चीज़ है कि वहाँ जाने के बाद फिर हमें भी इन्वॉल्व ना होना पड़े। मैं देखती हूँ कि अपनी माएँ रेगुलर स्कूलों में वॉलंटियर करती हैं और बच्चों के साथ खुद भी वहाँ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जितने दीन के इदारे होते हैं वहाँ लोग इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते। तो जो हम देंगे वही लेंगे, अगर हमने कोशिश करनी है, और अल्लाह करे कि हम उस लेवल तक जा सकें कि मुल्कों के निज़ाम के अंदर ये किताब डल जाए, यानी कुरान और हदीस ये हमारे कोर्स का हिस्सा हो जाए। और यकीन करें ये कोर्स था, ये मुसलमान होने का कोर्स है। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो आप डॉक्टरी की बुक्स पढ़ते हैं ना, इस इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियरिंग की बुक पढ़ते हैं, इसी तरह मुसलमान एक डिग्री है, इस डिग्री को हासिल करने के लिए इस्लाम की किताब पढ़नी पड़ती है। लेकिन आज हाल क्या है, 80% से ज़ायद हमारी जो आबादियां हैं वो इस किताब से दूर है, और नतीजा जो है वो हम सबके सामने है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को आम करना है कि हर एक के हाथ में पहुंच जाए। फी जमाना हमारे बहुत से मुबल्लिगीन आयात की बजाय हकायात, कुरानी आयतों की बजाय अपनी बातों से इस्लाह कौम की कोशिश करते हैं, मगर ये तरीका गैर मुफीद बल्कि बसा औकात नुकसानदेह हो जाता है। ये किस कदर दुख की बात है कि हमारे मुबल्लिगीन अमूमन तालीमे कुरान और हदीस इगमाज बरतते हैं। इगमाज बरतना क्या होता है? ये गैन नींद दुआत, ये पलकें झपकना नहीं होता जैसे, यानी रू गर्दानी करना या पलकें छुपा लेना, गमजा, यानी मतलब ये कि आंखें चुराते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग हदीस यानी इरशादात की बजाय अकवाल और रिजाल पर जोर देते हैं, यानी लोगों की बातें, लोगों के अकवाल। फलां बुजुर्ग ने ये कहा, फलां के ये, फलां और फलां। हकीकत यह है कि इस तरह की तबलीग और दावत से कौम की हालत सुलझने की बजाय उलझ जाती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह एक, उसका रसूल एक, सब उसको मानेंगे, उसकी बात सही है। लेकिन जब हम उनको छोड़ के दूसरे लोगों पे जाते हैं तो हर बंदे को, किसी को एक माइंड का बंदा अच्छा लगेगा, किसी को दूसरे माइंड का, और फिर उससे इख्तलाफ होगा। कहाँ अल्लाह और रसूल का बाज़मत कलाम और कहाँ दूसरों का मिला जुला कलाम, जो यकीनन कुरान और हदीस का हम पल्ला नहीं हो सकता। और अफसोस है इन लोगों पर जो पूरा खुतबा, जुमा या 2 घंटे की तकरीर झूठे वाकयात और घड़े हुए किस्से कहानियों पर सर्फ करके अपना और दूसरों का वक्त जाया करते हैं। ये हकीकत है। हमारे जुमे के खुतबे और हमारी दरसो तदरीस जवाज बाज दफा सिर्फ और सिर्फ हकायतों और रिवायतों पर मबनी होती है। उलमा लोरियां देते हैं दुनिया वालों को, सोए हो तो सोते रहो, ना जिंदगी बदलने वाली बातें की जाएं, ना अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ तर्ज़ जिंदगी अपनाया जाए, और ना तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो। कभी गौर करिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने अगर यही कुछ करना होता तो मक्का वाले तो आपको हाथों हाथ लेते। क्यों दुश्मनियां ली उन्होंने? इसी बात पे ली कि उनकी बातों, उनके बुजुर्गों की बातों को छोड़ के अल्लाह की बात ले आए। तो लिहाजा असल तबलीग क्या है? कि जिसके अंदर अल्लाह की बात नुमाया हो और उसके रसूल की बात के जरिए से उसको मजीद वाज़ेह किया जाए। हमारी तबलीग और उसके तरीके में बहुत सी गलतियां हैं जिनकी बिना पर तबलीग गैर मुअसर हो रही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि तबलीग का नबवी तरीका अपनाया जाए, यानी जो नबियों ने इख्तियार किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुबल्लिग कायनाते हस्त और बूद में ना कोई पैदा हुआ और ना क़यामत तक होगा। हस्त और बूद ये फारसी के लफ्ज़ है। बूद कहते हैं था, वॉज, और हस्त कहते हैं इज, यानी आज और कल, ये मुराद है, माजी और मुस्तकबिल। इसी से फिर हमारा लफ्ज़ है ना, हस्ती, मेरी ये हस्ती है, या यानी मैं हूँ। हस्त में आज है और बूद में कल था, ना कोई पैदा हुआ और ना क्यामत तक रहेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तबलीग ना किसी ने की और ना कोई कर सकता है। तो ये था चैप्टर अल्लाह के नबी सल्लम के एक मुबल्लिग होने के नाते से आप कैसे थे और क्या मामला था। हम सब को अपने लिए अगर अमल लेने हो तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट इसमें मिल सकते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को हुक्म दिया। यानी पूरे अगर चैप्टर को एक खुलासे में अगर एक पेज पे आपके पास रखूं, तो कल जब आप इसकी तैयारी करेंगे टेस्ट की बुक की, तो आपको आसानी हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने यानी हुक्म दिया था, तबलीग की जिम्मेदारी आप पे डाली, अल्लाह के नबी सल्लम ने ये दावत अपनी उम्मत को भी दी जब आप दुनिया से जाने वाले थे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी एक तबलीग वाली जिंदगी थी, हर रूप में आपने तबलीग की, फिर हज्जतुल विदा के मौके पे आपने हर इंसान को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि अब मेरे बाद तुमने इस पैगाम को आगे करना है, और कौम को गवाह बनाया इस बात पे कि अल्लाह ताला के सामने, यानी इस बात का कि वो पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया। फिर हमने इसमें देखा कि तबलीग सिर्फ उलमा का काम नहीं, ये हर इंसान के करने का काम है, हर जगह अपने हालात और मौके के एतबार से। फिर हमने इसमें देखा कि तबलीग सिर्फ तकरीर और तहरीर से नहीं, अमल से भी होती है, और अमल की तबलीग जो है वो ज़्यादा मुअसर होती है। फिर उसके बाद हमने नबी सल्लम का अंदाज़ देखा कि आप कैसे तबलीग करते थे, और आपका अंदाज़ जो था वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट था, और बात बड़ी ढकी छुपी करते थे ताकि लोग उस बात पे शर्मिंदगी महसूस ना करें, और रिएक्शन में आने की बजाय बात को मानने वाला ज़हन बना लें। फिर इसी तरह हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी लालच और तमा के तबलीग करते थे। फिर हमने आपकी बेचैनियों को देखा कि लोगों की हालत पे जो आपका दिल जला करता था, यानी ये था वो फ्यूल जिसकी वजह से इंसान ये काम कर सकता है, वरना दुनिया की कोई और चीज़ नहीं कि जिसके लिए इंसान दिन रात वक्फ कर दे। आप देखिए कि दुनिया का भी माल इंसान कमाता है तो आखिर थक जाता है, कहता है छोड़ो अब और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बस सुबह जॉब की है तो कोई उसको के आओ नाइट शिफ्ट भी लगानी है, नहीं लगाएगा कोई। कोई नाइट शिफ्ट करके आए और उसको लोग पूछे अच्छा क्या रेडी हो अगली जॉब अगली शिफ्ट के लिए, आप कहेंगे नहीं छोड़ो जान भी चाहिए, थक गए, नींद आ गई, बच्चे हैं, घर है, हम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक काम है जो इंसान रात दिन कर सकता है, दिन में भी करता है, रात को भी करता है, सोते में भी उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, और वो कौन सा काम है? अल्लाह के दीन का काम, उसकी रजा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने ये करके दिखा दिया कि ये काम किस लेवल पे जाके करना है। फिर इसके अंदर हमने अल्लाह के नबी सल्लम की हिर्स देखी इस बात की कि लोग आप पर ईमान ले आए, और आप इसके लिए बाज़ दफ़ा यानी उन लोगों को ज़्यादा अहमियत देने लगते थे जो इन लीड्स में से थे, ताकि इनके मानने से दीन का काम ज़्यादा फैलेगा, जल्दी फैलेगा। फिर उसके बाद हमने नबी सल्लम का मुकाम जो था आपके सहाबा की नज़र में देखा कि किस तरीके से सहाबा कराम ने भी उसी मिशन को अपना लिया जो अल्लाह के नबी सल्लम का मिशन था। और फिर उसके बाद हमने चार मुहर्रिकात देखे थे, चार मोटिव्स देखे थे कि जो किसी को भी दीन का काम करने के काबिल करते हैं। मैं चाहूंगी कि हम अपना जायजा भी लें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या मेरे अंदर फरीज़ तबलीग का शदीद एहसास पैदा हो चुका, क्या मुझे अल्लाह की रजा का बेपनाह शौक लग गया, क्या मेरे अंदर इंसानियत का सच्चा दर्द पैदा हो गया, क्या मुझे आखरत की कामयाबी की गैर मामूली फिक्र लग गई है। थोड़ी तो लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गैर मामूली जब तक फिक्र नहीं लगती, अनयूजुअल किस्म की फिक्र आखरत की नहीं लगती, तब तक ये बात नहीं बनती। फिर उसके बाद नबी सल्लम के किरदार को सामने रखते हुए हमने सात मुख्तलिफ खूबियाँ देखी थी जो एक दाई दीन में होनी चाहिए। आप अपने लिए भी यही खूबियाँ चेक करेंगे कि क्या मैं इन चीज़ों के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अल्लाह की तरफ दावत देती हूँ, क्या मैं खुद अमली नमूना हूँ इस बात का कि लोग मेरी बात सुने, क्या मैं हिकमत और मौईज़त से बात करती हूँ, क्या मेरा अंदाज दिलसोज है, लोगों के दिलों में उतरती है बात मेरी, क्या मैं इज्तमाई तबलीग की कोशिशें भी करती हूँ, क्या मैं इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे सब्र करते हुए इस्तिक्लाल का दामन थामती हूँ, यानी जम जाती हूँ, टूटती तो नहीं इस रास्ते में आते हुए लोगों की बातों से या उनकी मनफी प्रोपेगंडे की वजह से। फिर अगला नुक्ता था, क्या मैं इस रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, जान इसारी के लिए तैयार हूँ, और फिर क्या मैं इस रास्ते में इस्तेयानत और इस्तेगफार करती हूँ, यानी अल्लाह से मदद तलब करती हूँ ताकि मेरे लिए ये काम आसान हो जाए। और आखिरी पॉइंट जो इस बाब का हमने देखा कि क्या मेरी तबलीग का वही निसाब है जो अल्लाह के नबी सल्लम की तबलीग का था, क्या वाकई मैं भी उसी अंदाज से सोचती हूँ जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए सोचते थे। तो ये था चैप्टर पूरा हुआ। मैं चाहूँगी कि आपको तिलावत सुनाई जाए सूरह फातिहा की एक बार, और मौका दिया जाए चंद मिनट तक कि आप कुछ शेयर कीजिए, कोई सवाल इस बाब में है या कोई चीज़ जो आपने फील की इसको पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी से, तो आप सबके साथ शेयर करें ताकि फिर हम अगला चैप्टर जब शुरू करें तो हम एक बिल्कुल नई सोच के साथ इस बात को शुरू करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।